हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखय। चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले। स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति, गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गौरंगी श्रीराधी वृंदावनेश्वरी, ऋषिभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद आठवां अध्याय श्लोक संख्या 4। इन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए अमृतमय शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सांत्वयामास मुनिभिः हतबंधून् शुचार्पितान्,
भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धुषु चापिता भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धुषु चार्पितम् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रिया सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धुषु चार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियान्
शब्दों का अर्थ सांत्वयामास यानी जो दुखी लोग थे उनको ढारस बंधाई मुनि भीर वहाँ पर उपस्थित मुनियों समेत हत बंधुन जिनके मित्र तथा बंधु मारे गए थे शुचार पितान सभी को धक्का पहुंचा था। भूतेषु देवों पर कालस्य सर्वशक्तिमान के परम नियम की गतिम प्रतिक्रिया दर्शयन दिखलाया न प्रतिक्रिया कोई ना मना का कोई भी नहीं है। प्रतिक्रिया मतलब उपचार अनुवाद सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त शोकार्त जनों को ढारस बंधाया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि परमेश्वर के आदेश अंतर्गत प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्यतः धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। प्रामाणिक धर्म भगवान के आदेशों का पालन करना है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने वास्तविक धर्म के विषय में बताया है कि ये जो संसार का जो नियम है कठोर नियम है जीवों के द्वारा बदला नहीं जा सकता। क्या नियम है? जो मनुष्य जन्म लिया है उसका अवश्य एक दिन देहांतर होता है अवश्य मृत्यु होती है। तो ये इस संसार में जीव का आना जाना जो भी उसने प्राप्त किया मृत्यु सर्वहरश्चाहम मृत्यु इतनी कठोर होती है कि वो आपके पास जो कुछ भी है जो कुछ आज तक अपने अपने जीवन में बड़ी मेहनत और कठिन तपस्या के बाद प्राप्त किया है वो सारा का सारा आपसे छीन लेती है। यहाँ तक कि बहुत ही प्रेम से पाला पोसा हुआ ये शरीर जिसको आप मेरा 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 कहते हुए थकते नहीं हैं, मेरे शरीर को ज्यादा से ज्यादा खाना है मेरे शरीर को अच्छे से अच्छा सजाना है मेरे शरीर को अच्छे से अच्छा भोग प्रदान करना है। जब जीव जब तक जीवित रहता है जब तक इसके अंदर आत्मा होती है तब तक अपने शरीर को पोसते हुए थकता नहीं है लेकिन एक क्षण में मृत्यु आती है और इस शरीर का ढेर मिट्टी का ढेर बना के चली जाती है जिसको पीछे उसी के जो प्राण जीव बंधु हैं वो उसको जलाकर राख कर देते हैं। तो भगवान यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाता है और यही भगवान ने जो नियम बनाए हैं वास्तव में वही धर्म है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। प्रामाणिक धर्म क्या है? जीव के लिए एक ही धर्म है क्या? भगवान के आदेशों का पालन करना। भगवान के आदेश भगवत गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए। भगवान ने क्या कहा है? भगवान कहते हैं अरित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजत भजस्वमाम। मैंने ये संसार बनाया है, इसके अंदर तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं रखा, इसके अंदर कोई शाश्वतता नहीं रखी है, क्योंकि तुम नित्य हो, तुम इटर्नल आत्मा हो, तो तुम्हें इस अनित्य जगत में, अशाश्वत संसार में कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है। न अल्पे सुखम, इस अल्प संसार में जो कि जिसका आने के हर वस्तु का यहाँ पर क्षय होता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न देशु रमते बुधा, जो वाक्य में बुद्धिमान होते हैं वो इन भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो इनमें आनंद प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते हैं। भगवान ने साफ साफ कह दिया, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वमान। जब तुम इस संसार को प्राप्त कर लिए हैं अपनी इच्छा के कारण, अपनी इच्छाओं की हवस की पूर्ति के कारण तुम्हें इस संसार में भेज दिया गया है, तो भी सावधान हो जाओ। यहाँ पर आकर तुम्हें केवल एक ही क्या करना है काम, इमं प्राप्य भजस्वमां। यदि तुम मेरा भजन करोगे तो तुम अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार आनंद को प्राप्त करोगे। यहाँ आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भगवान के ये आदेश भगवद गीता में स्पष्ट रूप से घोषित किए गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह केवल उनका, उनके नियमों का अनुसरण करे। जीव को क्या चाहिए कि जो भगवान ने आदेश दिए हैं उनका पालन करे, इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो सकेगा। जीव अपनी इच्छा अनुसार सुखी होना चाहता है, अपने दुख खत्म करना चाहता है अपनी स्ट्रगल से, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करके। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, यदि जीव को भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी होना है तो उसका केवल एक ही तरीका है कि वो भगवान के आदेशों का पालन करे, क्योंकि ये भौतिक जगत भी भगवान के नियमों के अनुसार चलता है। और यहाँ पर भी यदि हम भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करेंगे तभी हम आनंद से जी सकेंगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी आगे बताते कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा कर्तव्य है कि भगवान के आदेशों का पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम इस संसार के बंधन से छूट जाएं तो भी अपनी मुक्त अवस्था में भगवान की प्रेम भक्ति करते रहें। जीव का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान तुम चाहे मुझे इस मृत्यु लोक में ही बारंबार मम जन्मनि जन्म ईश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकितये, कि मुझे, मैं ये नहीं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो जाए, मुझे इस भवबंधन से छुटकारा मिल जाए। भगवान तुम चाहे मुझे इस भौतिक जगत में रखो या आध्यात्मिक लोक में अपने पास बुला लो, मैं जहाँ भी रहूँ भवतात् भक्तिर् अहेतुकितये, बस एक ही कृपा करना कि तुम्हारी भक्ति से मैं कभी दूर ना हूँ, क्योंकि मेरा केवल जीवन स्वरूप हो एक विश्व नित्य दास, मैं दास हूँ तुम्हारा। यहाँ पर सेवा करवाना चाहते हो या अपने गौलोक धाम में, मुझे केवल अपनी सेवा के लिए यूज करो। जीव का केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा कर्तव्य है कि भगवान के आदेशों का पालन करें, जैसे भगवान ने आदेश दिया उनको पालन करें, और यदि भगवत कृपा से हम संसार के बंधनों से छूट जाएं तो भी मुक्त अवस्था में भगवान की प्रेम भक्ति करते रहें। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने को देख पाते हैं ना ही भगवान को, लेकिन जब हम भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को पा लेते हैं तो हम अपने आप को तथा भगवान को साक्षात देख सकते हैं। श्लोक प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई है, भौतिक अवस्था यानी कि जब तक हम अपने आप को ये देह समझते हैं, देहात्म बुद्धि में रहते हैं, तब तक तो ना हम अपने आप को समझ पाते हैं, ये भी नहीं समझ पाते तक हम, ये तो ये शरीर तो एक व्हीकल है, एक एक है ना गाड़ी के समान है जो हमें मिला है, जिसमें बैठकर हमको उस स्थान तक पहुंचना है, इस इस शरीर में रहकर हमको ऐसे कार्य करने हैं कि हम अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करें। तो जब तक हम देहात्म बुद्धि में होंगे, इस शरीर को ही अपना आप समझते रहेंगे, तब तक ना हम अपने आप को समझेंगे और ना ही भगवान से समझेंगे। और जैसे ही हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे, जब हमें ये रियलाइज होने लगेगा कि भौतिक वस्तुएं हमारी किसी भी मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा का इन भौतिक वस्तुओं से क्या लेना देना। जब भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी तो अपने मूल आध्यात्मिक रूप को प्राप्त करके हम अपने आप को भी देख सकते हैं और भगवान का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। अतएव मुक्ति का अर्थ है जीवन की भौतिक बुद्धि को त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनर्धारण करना। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर मुक्ति की परिभाषा बताई है कि मुक्ति का अर्थ क्या है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिता, कि भौतिक बुद्धि को त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप को, क्या स्वरूप है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेन नित्यदास, आध्यात्मिक स्थिति को पुनः प्राप्त करना। तो यदि उसके लिए मरने की भी आवश्यकता नहीं है, यदि जीव यहीं पर अपनी आध्यात्मिक स्थिति को स्वीकार करता है कि भगवान ने तुम्हारा दास हूँ, जैसे तुम्हारे आदेश है उनके अनुसार मैं कार्य करूँगा और मैं यहाँ रहूँ चाहे किसी भी लोक में रहूँ, मेरा कार्य केवल आपकी सेवा करना है, तो वही मुक्ति है। इस तरह से यह मनुष्य जीवन अपने आप को इसी आध्यात्मिक स्वतंत्रता के योग्य बनाने के लिए है। ये मनुष्य जीवन भगवान ने दिया ही इसलिए है कि हमें इस मनुष्य जीवन के द्वारा बुद्धि से हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करके उसको उसी के अनुसार जिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं, दुर्भाग्यवश हम माया के वश में होकर कुछ वर्षों के इस क्षणिक जीवन को ही स्थायी मान देखते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित देश, घर, भूमि, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैसे तो भगवान ने ये जीवन दिया है कि हम अपनी वास्तविकता को समझें और हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करें। वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए इस मनुष्य जीवन में हम भगवान का चिंतन करें, भगवान का भजन करें। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस संसार में मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी हम माया के वश में होकर जो ये मनुष्य जन्म हमें बहुत ही थोड़े समय के लिए मिला है, कुछ वर्षों के लिए क्षणिक जीवन यदि हमें मिला है, तो ये नहीं सोचते कि एक एक करके दिन समाप्त हो रहे हैं, मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूँ, ये नहीं सोचते, बल्कि सोचते हैं कि कैसे अपने इस जीवन को और सुखी करें, अपने इस क्षणिक जीवन को जो बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है उसको स्थायी मान बैठते हैं और इस माया के द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथाकथित। ये जो छद्म स्वरूप का क्या मतलब है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब प्रतिबिंब है, सब रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का। केवल इसको ही हम वास्तविकता मानते हैं और जो देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति, जो कुछ भी यहाँ पर केवल दिख रहा है वो हमारा कुछ नहीं है, उसके सामित्व से भ्रमित हो जाते हैं और इस तरह हम माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बस ये चाहिए, मेरा है, ये झगड़ा होता रहता है, फसाद, घर, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, पिता पुत्र में झगड़ा हो जाता है, ये मेरा, ये मेरी जमीन है, ये मेरा जायदाद है, ये नहीं सोचते कि मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं, मैं जब आया था तो कुछ नहीं लेकर आया था और कुछ ही सालों के बाद मैं वापिस चला जाऊंगा, कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। एक छोटी से छोटी चीज पर भी लड़ाई होती है, मेरा है, मेरा है। तो
ये श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम यह अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साज सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब तक जीव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता ना, तब तक जीव अपने आप को इस भौतिक शरीर समझता है और इससे रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं को अपना मानता है। लेकिन जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे ये पता चलता है कि इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, ये भौतिक वस्तुओं से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। और ऐसा होने पर तुरंत ही भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। जब जीव को ज्ञान प्राप्त हो जाता है फिर तो उसे और भी दुख होने लगता है कि मैंने कितना समय वेस्ट कर दिया, मैं आधे से ज्यादा जीवन मेरा समाप्त हो गया और मैंने कुछ भी नहीं किया कृष्ण प्राप्ति के लिए, ना कोई अच्छी साधना की, ना कोई मैंने अच्छी सेवा की, ना साधु संग किया, ना भगवान की कथाओं का श्रवण किया, ना भगवान के पवित्र नाम का जप किया, मैंने क्या कर दिया, इतना कीमती समय, इतना कीमती मनुष्य जन्म मुझे भगवान ने दिया। तो जैसे जीव को भक्तों के संघ के द्वारा ये सब रियलाइज होने लगता है, फिर वो तुरंत ही इन भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार की भ्रांतियों का ऐसा स्पष्टीकरण भगवत भक्तों की संगति से तुरंत ही हो जाता है, क्योंकि वे मोहग्रस्त हृदय के भीतर दिव्य ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम होते हैं और इस तरह से मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त कराने वाले होते हैं। भगवान के जो भक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं भगवान के अंदर प्रेम होता है, भगवान से प्रेम करते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति को जानते, भौतिक वस्तुओं से कोई आसक्ति नहीं रहती है, तो यदि हम ऐसे व्यक्तियों का संग करते हैं तो हमारे हृदय से भी, क्योंकि वो हृदय के अंदर पवित्र ध्वनि को प्रविष्ट कराने में सक्षम है भगवान के भक्त, जब हमें भगवान के पवित्र नाम और पवित्र लीलाओं का श्रवण कराते तो हमारे हृदय में एक उत्साह उठता है कि हम भी भगवान से प्रेम करें। जिस दिन हमारे दिल में भले प्रेम नहीं हो रहा है अब तक, क्योंकि करोड़ जन्मों से न जाने कब से भटक रहे हैं, भले ही हम उस प्रेम को अभी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन खाली ये रियलाइज हो जाना ना कि भौतिक वस्तुओं में मुझे कभी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है और इसके लिए मुझे कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करने के लिए सीरियस होना है, ये भी यदि हमें समझ में आ जाए ना, तो समझो कि हमारा ये जीवन सफल हो गया, कि अब हम भौतिक वस्तुओं से आसक्ति हटाकर कृष्ण चरणों में आसक्ति करने का प्रयास तो एटलीस्ट कर रहे हैं, तो भगवान अवश्य हमारी सिंसियरिटी को, हमारी सीरियसनेस को देखेंगे, भगवान स्वयं करेंगे। आगे हमारी इच्छा जो होती है ना, भगवान ने कहा है भगवद गीता में, यो याम नाम तनम भक्त है श्रद्धया से तुम इच्छति, जो तुम्हारी इच्छा होगी ना, मैं बैठा हूँ, मैं पूरी करूंगा, तुम पहले इच्छा तो करो। वास्तव में भक्तों, ये भक्तों का संग ही है जब हमारे हृदय में इच्छा उत्पन्न होती है कि अब मुझे भौतिक वस्तुओं से आनंद प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करनी है, बल्कि मुझे भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए अभ्यास करना है। श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि संक्षेप में ये उन लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। युद्ध से पीड़ित कुरु वंश के सदस्य मृत्यु की समस्या से शोकातुर थे और भगवान ने उनको ज्ञान से ढारस बंधाया। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। जैसा कि हमने पढ़ा कि समस्त पांडव और उनकी पत्नियां, सारी स्त्रियां दुख से बहुत पीड़ित थी और बहुत ज्यादा दुखी गंगा के किनारे पर जल दे रही थी उन प्राणियों को जो कि जिनकी मृत्यु हो गई थी और उस समय बहुत ज्यादा दुखी हैं, कौन कौन? श्लोक नंबर 3 में हमने पढ़ा, तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारीं पुत्र शोका शोकार्ता प्रथम कृष्णं च समाधव। ये तो बहुत ज्यादा दुखी थे, राजा युधिष्ठिर बहुत ज्यादा दुखी थे। सबसे पहला नाम उनका आया है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये पूरा का पूरा युद्ध जो हुआ है, इतने सारे लोगों की हत्या हुई है, उसका वास्तविक कारण मैं हूँ, मेरे कारण हुआ है, मैंने ये सब करवाया है और सबकी मृत्यु का भार मुझ पर है। तो बहुत रो रहे थे, उनको बहुत दुख हो रहा था कि मेरे कारण मेरे अपने बच्चों की हत्या हो गई, मेरे कारण पिता माँ की, मेरे गुरुजनों की हत्या हो गई, मैंने क्या कर दिया, मेरे अपने भाई जो कि पिता के समान थे उसकी हत्या हो गई। वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे, बहुत दुखी थे। तो उस समय सांत्वयामास मुनि भेद सांत्वयामास, यानी अब उस समय क्योंकि सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे तो उनको धारस बंधाने के लिए, किसने? जो पहले श्लोक में बताया गया ना, जब माधवा, तब माधव यानी भगवान श्री कृष्ण ने उनको सांत्वना यानी सांत्वना देने के लिए, धारस बनाने के लिए क्या किया, मुनिवीर समस्त मुनियों को भी अपने साथ मिलाया। क्योंकि जब आप अकेले कोई कार्य करते हो, किसी को कोई बात बताते हो तो हो सकता है उसको समझ में नहीं आए, लेकिन बहुत सारे लोग अगर मिलकर एक चीज बताते हैं तो फिर बात समझ में आ जाती है। तो क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा संगीन मसला था, बहुत ज्यादा ऐसा सिचुएशन था कि सभी दुखी थे, सब रो रहे थे। स्त्रियां उधर विलाप कर रही हैं, महाराज युधिष्ठिर उधर विलाप कर रहे हैं, धृतराष्ट्र रो रहे थे और महाराज युधिष्ठिर को देखकर उनके सारे भाई भी रो रहे थे। तो यहाँ पर उसका कारण बता रहे हैं, हत बंधुन सुचार पितान, हत बंधुन मतलब जिस जिसके मित्र और संबंधी मर गए थे उन सबको बहुत ज्यादा सुचार पिता, मतलब उनको इतना दुख हो रहा था कि वो अपने दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और उनको रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे। तो भगवान ने समस्त मुनियों के साथ उनको धारस बंधाई। क्या कहा उनको भगवान ने? एक ही वाक्य, सिर्फ एक ही वाक्य में भगवान ने सब कुछ बता दिया। क्या बताया? भूतेषु कालस्य गतिम, यानी जीवों पर काल की दर्शयन अप्रतिक्रिया, जीवों पर काल की अप्रतिक्रिया, यानी जो जीव सभी जो है वो क्या है, काल के अधीन है। ये काल ही है जो जीवों को जन्म और मृत्यु समय समय पर देता है। ऐसा नहीं है कि आपके कारण ही किसी का वध हुआ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सांत्वना देते कि महाराज आप शोक क्यों कर रहे हो, आप शोक मत करो, आपने किसी की भी हत्या नहीं कराई है। ये जो काल है वो उसका नियम है, वो कुछ अपने उसके नियम होते हैं और वो करके ही रहता है। देखो हमने तो युद्ध को रोकने का कितना कितना प्रयास किया, आपने तो कितना इस युद्ध को टालने का प्रयास किया, मैं खुद भी गया था शांति दूत बनकर, मगर फिर भी ये युद्ध होना था ना, क्योंकि काल ने ये पहले से निश्चित कर लिया था ना, इसलिए ये युद्ध हुआ और सबकी मृत्यु हुई। अब दूसरी बात ये कि मृत्यु हो गई है तो भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन प्रतिक्रिया, उसका कोई प्रतिक्रिया कर भी नहीं सकते। अब उसके बदले में शोक करने का भी क्या लाभ है? काल जो चाहता है वो सब करके रहता है, जो होना होता है वो हो ही जाता है। महाभारत युद्ध को ये जो युद्ध हुई थी उसको टालने के लिए सारे जितने भी महान योद्धा थे उन्होंने वास्तव में बहुत प्रयास किया था। भीष्म, द्रोण, विदुर सबने बहुत प्रयास किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत ज्यादा प्रयास किया था और उनके लिए वो शांति दूत जब बन के गए तो बहुत रिक्वेस्ट की थी धृतराष्ट्र को बोला था कि महाराज मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि युद्ध होने मत दीजिए। अगर आप वैसे तो पांडवों को उनके हिस्से का राज्य दे देना चाहिए, लेकिन अगर राज्य नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उन्हें आप अपना राज्य भी अपने पास रखिए, हमें केवल 5 गांव दे दीजिए। मैं पांडवों की ओर से आपको वचन देता हूँ कि पांडव 5 गांव लेकर भी संतुष्ट हो जाएंगे, वो आपके राज्य पर कभी आक्रमण भी नहीं करेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा 5 गांव तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं नहीं दे सकूंगा। तो इतना कहने के बाद उल्टे भगवान को ही बांधने चला कि भगवान को बांधने के लिए अपने सैनिकों को यह आदेश दिया कि बंदी बना दो इस ग्वाले को। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जहां पर जिस युद्ध को रोकने के लिए स्वयं भगवान ने इतना प्रयास किया, अब यहाँ पर ये समझने की बात है कि भगवान भले प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो जीव को अवसर भी साथ में प्रदान कर रहे होते हैं कि आपको पूरी पूरी स्वतंत्रता है, मैं भले जो चाहता हूँ वो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो अगर तुम अच्छे बन जाते हो। भगवान देखो भक्त बनने का और अच्छा बनने का आपको सदैव समय दे रहे होते हैं, आपको सुविधा दे रहे होते हैं, आपको आदेश दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बनना चाहते हो तो उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। भगवान ने दुर्योधन को भी अवसर दिया, भगवान ने रावण को भी अवसर दिया, लेकिन वो अपनी बुद्धि के कारण माया का पर्दा इतना तीव्र था कि उनको भगवान दिखे नहीं। अब यहाँ पर भगवान प्रयास कर रहे हैं, भले ही बाहर से कर रहे हैं, उनको पता है कि नहीं करेगा दुर्योधन ये सब, लेकिन फिर भी अपनी ओर से भगवान ने उसे अवसर दिया। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं भूते सुकालस्य गतिम दयशयन अप्रतिक्रियम, कि जीवों पर जो काल की गति है, कठोर नियम जो है, उनकी प्रतिक्रियाओं का कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सकती। यानी कि वो बताना चाह रहे हैं भगवान कि काल जो चाहता है वो करके रहता है। और वास्तव में भक्तों समझने की बात क्या है बताओ, कि काल और कुछ भी नहीं है, काल का मतलब होता है भगवान की प्लानिंग। अब यहाँ पर ये प्रश्न हो सकता है अगर भगवान की प्लानिंग ऐसी थी तो फिर भगवान है ना शांति दूत बन के क्यों गए? जब भगवान की प्लानिंग थी युद्ध कराने की तो शांति दूत क्यों बन के गए? क्योंकि भगवान अंतिम प्रयास तक करते हैं जीव आत्मा को ये मौका देते हैं कि तुम सुधर जाओ, अब भी संभल जाओ, अब भी मेरे चरणों में आ जाओगे तो मैं तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा कर दूंगा। तो भगवान अपनी प्लानिंग को फेल कर देते हैं। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मैं अपनी प्लानिंग को फेल नहीं होने दूंगा, जो तुम चाहे जो भी करो। भगवान ने रावण को कहा कि तुम यदि मेरी शरण में आ जाते हो तो मेरी पत्नी को तुमने हरण कर दिया है, मैं उसके लिए भी तुम्हें माफ कर दूंगा। दुर्योधन को कहा 5 गांव दे दो, तुमने जो कुछ किया सबके लिए तुम्हें माफी मिल जाएगी। लेकिन ये जीव आत्मा जब प्रभुत्व जताने के बारे में सोचता है, जब ये सोचता है कि ये मेरा है, जब देहात्म बुद्धि में आकर उसके ऊपर माया का पर्दा चढ़ जाता है तो भगवान के आदेश की अवहेलना करता है, जिसके कारण उसे बहुत दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में जो कुछ भी होता है वो भगवान की प्लानिंग से होता है, लेकिन जनरल ये नियम है कि काल की गति को कोई भी रोक नहीं सकता। काल जो होने वाला होता है उसको बोलते हैं, यानी जो होने वाला होता है वो होकर ही रहता है। मतलब ये दृष्टांत देते हैं भीष्म पितामह के, जैसे आकाश में बादल पूरे आकाश में घिर जाते हैं और पूरी जगहों पे काले काले बादल, बहुत ही घनघोर बादल आ जाते हैं और एक दो दिन कुछ दिन के बाद बारिश होती है और ऐसा लगता है आसमान को देखो बाद में तो एक इंच भी बादल का नहीं दिखता है और वो सारे बादल जो है वो खत्म हो जाते हैं। उसी प्रकार आज हमें जो कुछ भी दिख रहा है, आज इस संसार में हम हैं, जो कुछ भी हमारे अपने निकट के संबंधी, हमारे बंधु बांधव, हमारी प्रिय वस्तुएं, इवन शहर गांव, जितने मुल्क सब कुछ दिख रहे हैं ना, वो सब एक समय आएगा सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से वर्षा के बाद आसमान पर एक भी बादल नहीं रहता, उसी प्रकार काल के प्रभाव से एक तो अभी तो ऐसा लगता है कि समय आने से पहले ही सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन जब प्रलय आता है वो तो सब नष्ट होता ही है। तो धीरे धीरे सब नष्ट हो रहा है, काल का ग्रास बन रहा है हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति। काल ने खाना शुरू कर दिया है, जिस दिन से किसी चीज का निर्माण होता है उसी दिन से काल उसे खाना शुरू कर देता है। अब किसी वस्तु को एक दिन में, किसी को एक कुछ मतलब कुछ घंटों में, किसी को एक दिन में, किसी को दो दिन में, किसी को एक हफ्ते में, किसी को एक महीने में, किसी को कुछ सालों में, और किसी को ब्रह्मा जी इत्यादि को बहुत बहुत सालों के बाद उसको समाप्त होना होता है। लेकिन होना है सबको समाप्त, ये एक जनरल नियम है। श्री प्रभुपाद जी से अगर कोई पूछता था कि क्या विश्व युद्ध होगा और संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी, श्री प्रभुपाद जी बोलते थे डेफिनेटली होगा। जब तक किसी संसार में, किसी धरती पर गाय का खून अगर गिरता है तो वहां पर कभी शांति उत्पन्न नहीं हो सकती, वहां सबको बहुत बहुत दुख झेलना पड़ेगा। और यहाँ संसार में हम देख रहे हैं कि सब लोग कितने दुखी हैं, और भगवान सांत्वना दे रहे हैं कि जो दुख हमारे जीवन में आते हैं वो तो आते ही हैं। उन अभी इतना ज्यादा अगर हम दुखी होंगे तो उससे कोई लाभ तो नहीं होगा। धीरज तत्र न मोहयति, जो धीर व्यक्ति होते हैं इन दुखों के आने से मोहित नहीं होते हैं। तो गांधारी को भगवान समझाते हैं कि देखो आपके पास पहले 100 पुत्र नहीं थे, काल ने आपको 100 पुत्र दिए और फिर वापस से ले लिए। जिस प्रकार से बादल संपूर्ण हवा जो है वो यहाँ वहां से बादलों को लेकर आती है, और फिर वही हवा जो है उस बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। तो उसी तरह से काल जो है वो हम हमारे पास जो कुछ भी है आज, जिसको हम मेरा मेरा कहते हुए थकते नहीं है, वो सब हमें काल ने दिया ना, समय के साथ साथ हमें मिला। और जिससे हमें समय ने ये सब दिया है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो हम सब हमें अंत में वो सब कुछ ले लेगा। जैसे मनुष्य भी इस संसार में जो भी आए हैं वो एक समय ऐसा आएगा कि वो सारे के सारे यहाँ इस संसार में चले जाएंगे। इसमें किसी के प्रयास से किसी का जन्म नहीं होता है ना। जैसे अगर कोई किसी का जन्म होना होता है तो उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः एक काल का नियम है जिसके कारण उसका जन्म हो जाता है, और उसी काल के अनुसार उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये जो काल का नियम होता है वो स्वयं हो रहा होता है। और कुंती महारानी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो आपके पास जब जिस दिन कर्ण आप कर्ण का जन्म हुआ था उसी दिन काल ने कर्ण आपसे ले लिया था, आपके पास तो नहीं था, इतने समय के बाद आपको मिला और पुनः आज उसकी मृत्यु हो गई है। तो हमें ये समझना चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। किसी भी वस्तु के अंदर हमें इतनी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए कि हम उसके खोने के उपरांत बहुत ज्यादा दुखी हों। तो यहाँ पर सबको भगवान सांत्वना दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा दुखी थे और वो सोच रहे थे ये सब मेरे कारण हुआ। भगवान श्री कृष्ण बताते उन्हें कि इतिहास में इतने इतने राजा हुए हैं, सब एक न एक दिन सब मारे जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये पहला युद्ध हुआ है, इसी में हत्याएं हुई हैं। इससे पहले भी बहुत सारे युद्ध होते हैं, जीव जन्म लेते हैं, मरते हैं, ये तो सब नियम है संसार का। वास्तव में भक्तों हम सबको काल की गति को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना होगा। जैसे हमारे अपने जीवन में काल कितना प्रभावित होता है, जब हम पैदा होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ समय के बाद किशोरावस्था में आते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो ये नियम है क्या, हमारा परिवार, हमारा भाई बंधु, हमारे जितने सगे संबंधी हैं वो हमें बच्चे से जवान होने से रोक सकते हैं? जवान होने के बाद बूढ़ा होने से रोक सकते हैं? नहीं ना, तो उसी तरह से बूढ़ा होने के बाद मृत्यु होने तक भी हमें कोई बचा नहीं सकता। जो कुछ भी है वो सब नियम अनुसार चल रहा है। एक परिवार का उदाहरण लीजिए कि कितने लोग आते हैं और चले जाते हैं, है ना। हम अपने परिवार को देखें तो हम देखते हैं ये किसका बेटा, वो किसका बेटा, उसका पप्पा किसका बेटा, उसका पप्पा किसका बेटा, उसका पप्पा किसका बेटा। तो कितनी सारी करोड़ों लोग, ये पीढ़ी कहाँ तक जाती है, गोत्र कहाँ तक जाता है जानते हो आप लोग? कश्यप मुनि तक जाता है। क्योंकि जब सृष्टि के आरंभ में मरीचि जो ऋषि थे, उनके पुत्र जो कश्यप थे और भी इत्यादि दूसरे भी पुत्र थे, उनसे गोत्र चलता है। अगर उनसे भी पीछे हम जाएं तो ब्रह्मा जी तक चलता है, और ब्रह्मा से भी आगे जाएं तो कहां तक, भगवान तक पहुंचता है। तो अगर देखा जाए कि भगवान ने जब सृष्टि को आरंभ किया, तब से लेकर अब तक कितनी कितनी सृष्टियां बर्बाद हुई हैं, कितने कितने जीव जन्मे हैं और मरे हैं, तो ये तो सब नियमित रूप से हो रहा है। लेकिन हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है कि काल की गति कितनी विषम है। हालांकि हम अपने जीवन में काल को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, जैसे रोज कैलेंडर में डेट बदलते हैं, संडे आता है फिर मंडे आता है, फिर महीना चेंज हो जाता है, जून जुलाई फरवरी मार्च अप्रैल, इस तरह से हम हर दफा देखते हैं एक साल चेंज हो जाता है, फिर बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ये नहीं सोचते हैं, कभी विचार भी नहीं करते हैं कि एक एक करके एक एक दिन हमारे जीवन का कम हो रहा है। कितनी खुशी मनाते हैं लोग जब उनका जन्मदिन होता है कि आज हमारा जन्मदिन है। हैरत की बात है, जब ये संसार एक जेल के समान है और हमें अपने घर से निकाल कर इस जेल में डाल दिया गया है, और इस जेल में हमको तड़पने के लिए, अपने भगवान से दूर रहने के लिए विवश किया गया है, और यहाँ पर हम दुख भोग रहे हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, हैप्पी बर्थडे। जेल में जाने के लिए कभी किसी को बधाई देनी होती है, बल्कि और भी दुख अपना नियुक्त करना चाहिए कि हमें बहुत दुख है कि आज के दिन आपको इस जेल में आने की सजा मिली थी, अब हम आपके लिए कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं कि जिससे आप जल्द से जल्द इस जेल से रिहा हो जाओ, ऐसा करना चाहिए ना। कैंडल जला के फूंकना, क्या ये है? हमें कुछ पता नहीं है कि हम किस ओर जा रहे हैं। ये सब वेस्टर्न जो सभ्यता है उसको अपना रहे हैं हम लोग, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि ये विचार करना चाहिए कि एक साल और कम हो गया, एक साल मैंने और जाया कर दिया भगवान की भक्ति के बगैर। अब तक मैं भगवान की भक्ति में सीरियसली आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, अभी तक मैं वही अपने कार्य कर रहा हूँ, और मेरी कोई सहायता भी नहीं कर रहा है जिसके कारण मैं भगवान की भक्ति और भक्तों का संग भी मुझे प्राप्त नहीं। दुखी होना चाहिए कि एक और साल जाया हो गया, न जाने कितना समय अभी बाकी बचा है। चिंता होनी चाहिए, लेकिन चिंता करने का ये मतलब नहीं है कि हम दुखी हो जाएं, रोते रहें बस यही, बल्कि चिंता करने का मतलब होता है कि इसके लिए कुछ ऐसा करें कि हम उस समय को, जो काल है, जो कि हमारे पास बहुत ही सीमित है, सीमित टाइम के लिए हमें संसार में भेजा गया है, और इस सीमित समय में हम कुछ ऐसा करें कि हमें दोबारा से जेल न भुगतनी पड़े। तो वास्तव में अगर काल महत्वपूर्ण नहीं होता तो भगवान भगवत गीता का एक मुख्य अंग न बनाते। जैसे हम जानते हैं भगवत गीता के 5 मुख्य विषय हैं, क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवान ने भगवत गीता में काल के विषय में बहुत बहुत बताया है। भगवान कहते हैं अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयम। अंत काल में यदि कोई मेरा स्मरण करते हुए इस देह को छोड़ता है तो वो मुझे प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं कि अगर आपको अंत काल में मुझे याद करना है तो उसके लिए क्या करो, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, सारे जितना समय है तुम्हारे पास उसमें मुझे याद रखो और फिर अपने कर्तव्यों को पूरा करो। वास्तव में भक्तों, जो बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति होता है ना, उससे भी ज्ञान होता है कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है एक दिन मुझसे छीन लिया जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी और मुझे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन ये जानना काफी नहीं है, उसके लिए हमें प्रयास करना है कि पुनः हमें इस दुख भरी संसार में, जहाँ से हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है, हमारे प्रेमी, हमारे प्रियजन, हमारे स्वजन, हमारी सारी मेहनत से कमाई हुई जितने भी धन दौलत घर जायदाद सब कुछ हमसे, हमारे पास इटर्नल नहीं रहता है और ना ही हम इस संसार में शाश्वत रूप से रह सकते हैं। तो कोई ऐसी जगह को प्राप्त करें जहाँ पर हमें यह दुख न देखने पड़े। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सदैव भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।